सुबह लगभग 10 बजे जाह्नवी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता सजा रही थी। अमर और दीक्षांत नहाकर तैयार हो चुके थे, उन्हें कहीं ज़रूरी जाना था इसलिए वे जल्दी में थे। रजत जी और कल्याण सिंह जी हॉल में आते हुए बोले, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। उनके ये कहते ही जाह्नवी का चेहरा खिल उठा। अमर और दीक्षांत जैसे ही सीढ़ियों से उतरे, रजत जी ने कहा, नाश्ता करके जाओ जहाँ जाना है। अमर आगे बढ़ते हुए बोला, इम्पॉर्टेंट है डैड, आकर करता हूँ मैं आपके साथ डिनर। कल्याण सिंह जी ने आंखें छोटी करते हुए कहा, बहू ने बड़े चाव से बनाया है तुम सबके लिए। अमर ने हल्की सी मुस्कान के साथ एक नज़र जाह्नवी को देखकर कहा, कल्याण सिंह जी, उसने चाव से बनाया है तो आप चाव से खा लीजिए, मैं तो आकर ही खाऊंगा। दीक्षांत ने एक नज़र जाह्नवी को देखकर कहा, सॉरी भाभी, इट्स अर्जेंट। जाह्नवी ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया, पर उसे दिल से बहुत बुरा लग रहा था, अमर उसके हाथ का बना हुआ खाना छोड़कर जा रहा था। दूसरी ओर समर्थ की कार मुंबई आ चुकी थी, पर वो घर आने की बजाय अपने प्राइवेट बंगले पर गया जहां वो त्रिशा को लेकर गया था। वो लगभग घसीटते हुए उसे अंदर ले जा रहा था। उसे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी कि त्रिशा को कितना दुख हो रहा है। उसने पाँव में कुछ नहीं पहना था, उसके पैरों से खून निकल रहा था। समर्थ ने अंदर आते हुए उसका हाथ एक झटके से छोड़ दिया, जिससे त्रिशा फर्श पर गिर गई और उसकी एक चीख निकल गई। उसने रोते हुए कहा, यू आर अ ब्लडी डेविल। समर्थ घुटनों के बल उसके सामने बैठते हुए बोला, यस आई एम, सो, और तुम मुझे इस नाम से भी बुला सकती हो, मेरी पर्सनालिटी पर काफ़ी सूट करता है। और तुम्हें पता है तुम्हारी पर्सनालिटी पर क्या सूट करता है? यू आर जस्ट लाइक अ टाइनी डॉल, जिसे अब मैं अपने इशारों पर नचाना चाहता हूँ। त्रिशा का चेहरा अब रोते रोते सूजने लगा था, उसके आंसू भी सूखने लगे थे और वो हैरानी से समर्थ को देख रही थी। कोई इतना हृदयहीन रूड इंसान कैसे हो सकता है? समर्थ उठते हुए बोला, आज से तुम इस खूबसूरत जेल में कैद रहोगी, समझी? अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम सोच नहीं सकती मैं तुम्हें कितनी भयानक सज़ा देने वाली हूँ, समझी? और तुम यहाँ सफाई करोगी, खाना बनाओगी, गॉट इट? त्रिशा के कान जैसे सुन पड़ चुके थे, वो कैसे इस डेविल की कैद में रह पाएगी? टाइनी डॉल, मैंने कुछ कहा है तुमसे? समर्थ की खतरनाक आवाज़ सुनकर उसकी रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसने डरते हुए हकलाकर कहा, समझ गई डेविल, गुड गर्ल। इतना कहते हुए समर्थ सीढ़ी बजाते हुए सीढ़ियों से होते हुए ऊपर बने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद त्रिशा रोकर थक चुकी थी, इसलिए खुद को संभालते हुए फर्श से उठी और लड़खड़ाते कदमों से इधर उधर चलते हुए उसने पूरे बंगले को देखना शुरू किया। कुछ ही देर में उसे किचन दिखाई दिया। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था और उसके लिए खाना बहुत ज़रूरी था। क्यों, ये आपको बाद में पता चलेगा। त्रिशा कुछ ही देर में किचन के सामने खड़ी थी। उसने इधर उधर देखते हुए फ्रिज ढूंढा और फिर उसे खोलकर देखने लगी कि उसमें कुछ खाने के लिए है या नहीं, पर उसमें फल, सब्जियां और कुछ सामान के अलावा खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। त्रिशा को याद आया समर्थ ने उससे कहा था कि उसे यहाँ का खाना भी बनाना है। त्रिशा ने प्यास से सूखते अपने होठों पर एक बार जीभ फिराई और फिर एक गिलास पानी लेकर उसे एक सांस में पूरा पी गई, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसका पेट अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका है। कुछ ना कुछ खाना बहुत ज़रूरी था और उसने कुछ सब्जियां निकाल लीं ताकि सब्जी बना सके। वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी सब कुछ जल्दी जल्दी करने की। कुछ ही देर में उसने सब्जी काटकर गैस पर चढ़ा दी और फिर आटा लगाते हुए रोटी बनाने लगी। पर एक दो ही रोटियां बनाई थीं कि उसे गैस की स्मेल से उल्टी जैसा महसूस होने लगा और वो जल्दी से गैस बंद करते हुए वॉश बेसिन के सामने जाकर उल्टी करने लगी। कुछ ना खाए होने की वजह से उसे लग रहा था हर उल्टी के साथ उसकी आंतें बाहर आ जाएंगी। उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू आ चुके थे। उसने रोते हुए धीरे से कहा, मम्मा, और अचानक ही उसका सर चकराने लगा और वो अगले ही पल निढाल होते हुए फर्श पर गिर गई। उसके सर पर हल्की सी चोट लग गई जिससे खून निकलने लगा, पर वो पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। रावत मेंशन, जाह्नवी अकेले रहकर आज पूरी तरह बोर हो चुकी थी। रजत जी को ऑफिस का कुछ काम था, वे उसमें बिजी हो चुके थे, और कल्याण सिंह जी को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना था, इसलिए वे भी घर से बाहर थे। कुछ देर बैठे रहने के बाद जाह्नवी की नज़र अमर के लैपटॉप पर गई और उसके मासूम होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो लैपटॉप के पास गई और अमर की चेयर पर बैठते हुए उस लैपटॉप को ऑन कर लिया। उसके लैपटॉप के वॉलपेपर पर एक लेडी की फ़ोटो लगी थी और वो और कोई नहीं बल्कि अमर की माँ थी। जाह्नवी ने उसका लॉक खोलने की कोशिश की, पर वो नहीं खुला और उसके होठों की मुस्कान गायब हो गई। उसने 3-4 बार ट्राई किया लेकिन वो नहीं खुला। कुछ सोचते हुए उसने खुद से कहा, शायद पापा जी को पता हो। इतना सोचकर वो लैपटॉप को हाथ में लेते हुए उठी और अचानक ही उसका पैर उसकी साड़ी में उलझ गया और उसके हाथ से लैपटॉप छूटकर गिर गया, जिसके अगले ही पल उसकी स्क्रीन टूट गई और जाह्नवी ने डर के मारे अपने मुंह पर हाथ रख लिया। जाह्नवी को साड़ी की आदत नहीं थी, जिस वजह से उसका पैर उलझ गया था, पर अब वो अमर का लैपटॉप तोड़ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। डर के मारे उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। कुछ बुरी यादें उसके दिमाग में घूमने लगी। वो करीब 13 साल की थी जब मीनाक्षी ने त्रिशा को एक आईपैड ला कर दिया था, जिसमें त्रिशा एनिमेशन के जरिए पढ़ाई करती थी। जानवी को भी पढ़ने का शौक था, इसलिए वो भी एक दिन चोरी से त्रिशा का आईपैड लूज करने की कोशिश करने लगी। फ्लैशबैक, आज दीदी की तरह मैं भी पढ़ूंगी। एक व्हाइट फ्रॉक पहने जानवी काफी खुश नजर आ रही थी। उसने अपने बाल एक पोनी टेल में बांधे थे। उसने लॉक कई बार टाइप किया जिससे आईपैड में अजीब सा सायरन बजने लगा और जानवी बिल्कुल डर गई और उसके हाथ से आईपैड छूट कर गिर गया। ठीक उसी वक्त मीनाक्षी कमरे में आई और जानवी पर चिल्लाते हुए बोली, ये क्या किया है बेवकूफ लड़की। और उसके अगले ही पल उसने एक जोरदार थप्पड़ जानवी के गाल पर चढ़ दिया और छोटी सी जानवी फर्श पर गिर गई और बुरी तरह रोते हुए बोली, जानबूझकर नहीं किया। मीनाक्षी ने उसकी पोनी टेल को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, अब तुम मुझसे जुबान लड़ाएगी। आगे से नहीं करूंगी ताई जी, प्लीज छोड़ दो। मासूम जानवी रो रही थी पर मीनाक्षी को उस पर दया नहीं आ रही थी। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट टाइम, जानवी बिस्तर से तेजी से उठकर घुटनों में मुंह छुपाए लंबी लंबी सांसें ले रही थी और बड़बड़ा रही थी, प्लीज छोड़ दो, आगे से नहीं हाथ लगाऊंगी।